नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली से 62,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न युवा केंद्रित पहलों का अनावरण करेंगे। युवाओं के कौशल विकास की एक ऐतिहासिक पहल के तहत प्रधानमंत्री देशभर के 1,000 सरकारी आईटीआई संस्थानों के उन्नयन हेतु पीएम सेतु का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी बिहार की पुनर्गठित मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का भी शुभारंभ करेंगे, जिसके तहत 5,00,000 स्नातकों को 2 वर्षों तक 1,000 रुपए का मासिक भत्ता प्रदान किया जाएगा। वे उद्योग उन्मुख पाठ्यक्रमों और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगे। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि अगर उसने फिर कोई शत्रुतापूर्ण हरकत की तो ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि उसे सोचना पड़ेगा कि उसे भूगोल में बने रहना है या नहीं। जनरल द्विवेदी ने राजस्थान के श्रीगंगानगर के पास एक सीमावर्ती गांव में सैन्य चौकी पर सैनिकों को संबोधित करते हुए ये बात कही।
इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म स्पॉन्सर कर रहा है, उसे रोकना पड़ेगा।
सरकार ने एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह के एक कथित एआई जनरेटेड वीडियो के दावों का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये वीडियो फर्जी है और इसमें डिजिटल रूप से छेड़छाड़ की गई है और वायुसेना प्रमुख ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। पत्र सूचना कार्यालय ने कहा कि एआई जनरेटेड वीडियो लोगों में दहशत फैलाने और उन्हें गुमराह करने के लिए फैलाए जा रहे हैं। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन के लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में विरोध प्रदर्शनों के दौरान निर्दोष लोगों पर सेना की बर्बरता की खबरों का उल्लेख किया। श्री जायसवाल ने बांग्लादेश के गृह सलाहकार जहांगीर आलम चौधरी के दावे को झूठा और निराधार बताते हुए खारिज कर दिया। आलम चौधरी ने दावा किया था कि बांग्लादेश में हाल की अशांति भारत सहित बाहरी प्रभावों से प्रेरित थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात वर्तमान 24,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 2029 तक 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा कि 11 वर्ष पहले रक्षा निर्यात मात्र 600 करोड़ रुपए था। श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम ने रक्षा प्रणालियों में स्वदेशी कलपुर्जों का उपयोग करना संभव बना दिया है और तेजस हल्के लड़ाकू विमान के 64% पुर्जे भारत में बने हैं। उन्होंने कहा कि देश 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग की पूरी टीम आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए 2 दिवसीय यात्रा पर कल शाम पटना पहुंची। अपने दौरे के पहले दिन चुनाव आयोग की टीम आज सुबह विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से चर्चा करेगी और उनके सुझाव सुनेगी। इसके बाद आयोग प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करेगा। इन बैठकों के दौरान प्रशासन और कानून व्यवस्था से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज बिहार की राजधानी पटना का दौरा करेंगे। अपनी यात्रा के दौरान श्री चौहान बिहार की राजधानी पटना में मखाना महोत्सव में भाग लेंगे। फिलिस्तीनी उग्रवादी समूह हमास ने कहा है कि वो गजा युद्ध को समाप्त करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना के कुछ बिंदुओं पर सहमत हैं। इनमें बंधकों की रिहाई और गजा का प्रशासन सौंपना शामिल है। हमास ने स्पष्ट किया है कि योजना के कई अन्य प्रावधानों पर बातचीत आवश्यक है। अमेरिका द्वारा उग्रवादी समूह को रविवार तक का समय दिए जाने के बाद हमास ने ट्रंप की 20-सूत्रीय योजना पर अपनी प्रतिक्रिया दी। नई दिल्ली में जारी विश्व पैराथलेटिक्स चैंपियनशिप के कल 7वें दिन भारतीय एथलीट्स ने 2 स्वर्ण सहित 4 पदक अपने नाम किए। सिमरन ने महिलाओं की 100 मीटर की T12 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं निषाद कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद T47 स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।